प्रिय मित्रों नमस्कार। 29 जुलाई 2015 के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसी क्रम में मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उस एक नौजवान साथी का भी, जिन्होंने एकेडमी की फरवरी 2016 में होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इनका नाम है सुबोध कुमार और आप हैं लखीसराय बिहार से। तो सुबोध, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं केवल एकेडमी की टीम की ओर से ही नहीं बल्कि जितने भी स्टूडेंट आपके साथ और आ रहे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है उनकी ओर से भी हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आप सबके लिए दो तीन कुछ इम्पॉर्टेंट सूचनाएं हैं। पहला तो फ्रेंड्स कि कुछ दिनों पहले, शायद 3-4 दिन पहले की बात है, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने नॉलेज सेंटर में प्रोवाइड भी किया था। उस आर्टिकल की शुरुआत हुई थी जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके भाषण से। अभी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने, खासकर जो हम इस्लाम आतंकवाद की बात करते हैं, उसको आधार बना करके अपना एक लेक्चर दिया था जिसमें उन्होंने भारत में भी जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, इस्लाम के प्रति जो बातें हो रही हैं, उनकी भी चर्चा उन्होंने की थी। मैंने वो आर्टिकल पढ़ा था और मुझे वो आर्टिकल अच्छा लगा था। फिर मुझे महसूस हुआ कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जिनकी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है, जो किसी तरीके से काम चला रहे हैं, उनको शायद उस आर्टिकल को समझने में दिक्कत हो या बहुत स्पष्टता से वो उसको ना समझ पाएं। क्योंकि होता ये फ्रेंड्स कि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन अगर बहुत स्पष्टता से बात हमारी समझ में नहीं आती तो हमारे ज्यादा काम की वो होती नहीं है। तो मैंने एक्सपेरिमेंट के बतौर फिर टाइम्स ऑफ इंडिया के उस आर्टिकल का ट्रांसलेशन कराया है और ट्रांसलेशन कराने के बाद आप सबके पढ़ने के लिए उसे उपलब्ध भी मैंने अपने afeis.com पर कराया है। मैं आप सबको राय सलाह दूंगा कि प्लीज आप उस आर्टिकल को पढ़ें और दो तरीके से पढ़ें। नंबर एक कि पूरी कौन सी बात कही गई है और दूसरी कि उसमें आपके काम की कौन सी बात है। उसमें मुझे एक बहुत अच्छी बात यह लगी थी कि उन्होंने इस्लाम के बारे में जो अवधारणा हमारी होनी चाहिए उसको बहुत दुरुस्त किया है और बताया है कि किस तरह से ब्रिटेन में जो ये प्रॉब्लम चल रही है और भारत में जो ये प्रॉब्लम चल रही है वो दोनों बिल्कुल एक जैसी नहीं है। तो दोस्तों, इससे आपको एक नया व्यू मिलेगा, आपके आपकी जो सोच समझ है उसका एक्सपेंशन होगा, उसका विस्तार होगा और चीजों के प्रति आप थोड़ा मौलिक रूप से विचार कर सकेंगे। हालांकि अभी मैंने उस आर्टिकल को ट्रांसलेशन ही कराया है लेकिन उसे एक अलग तरीके से भी पेश किया जा सकता था, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसको पढ़ें, देखें और फिर मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा, क्या इस तरह की कोशिश आगे भी जारी रखनी चाहिए, ये मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा। तो प्लीज ईमेल के जरिए मुझे आप सब सूचित करें। दूसरी सूचना ये है फ्रेंड्स कि मेरे पास एक मेल आया है संदीप दरड़े का, जो एकेडमी के सेकेंड बैच के स्टूडेंट रहे हैं और नासिक के रहने वाले हैं। उन्होंने आप सबकी सूचना के लिए खबर दी है कि जो प्री एग्जाम अभी अगस्त में होने वाले हैं तो उसकी जो टिकट होती है, जिसको हम लोग एडमिशन कार्ड बोलते थे, वो ऑलरेडी डाले जा चुके हैं आपके वेबसाइट पर और वेबसाइट का नाम है, आप सब जानते ही होंगे, upsc.gov.in। उस पर आप सब अपने अपने एडमिशन सो कॉल्ड एडमिशन कार्ड, जिसको अब शायद टिकट कहा जाने लगा होगा, वो अवेलेबल हैं, आप लोग देख सकते हैं। जो वेबसाइट का एड्रेस है मैं रिपीट कर देता हूं, upsc.gov.in। संदीप, इस सूचना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, कुछ दिनों पहले ही, 2-3 दिन पहले ही मेरे पास एक मेल आया था। ये मेल था ब्रजेश कुमार वर्मा का, सिद्धार्थ नगर से। उन्होंने मेल में ये लिखा था कि वो एक स्टूडेंट से मिले जिसके अभी 23rd रैंक आई है। मैं उनके मेल को अभी आपको ज्यों का त्यों पढ़कर सुनाऊंगा। और वो गुजराती भाषी थे, हिंदी में उन्होंने इंटरव्यू दिया, गुजराती उनका मीडियम था और उनकी 23rd रैंक आई। जब व्यक्तिगत रूप से उनसे मिले तो उन्होंने उनको कुछ मैगजीन्स के नाम सजेस्ट किए और afeis.com के बारे में भी बताया और उन्होंने कहा कि मैं इससे तैयारी करता था। मित्रों, मैं संकोच वश ये सूचना आप लोगों को नहीं देना चाह रहा था, संकोच इस बात का कि मैं जानता हूं कि हम अभी जिस दौर में रह रहे हैं उसमें सफलता सबसे ज्यादा संदिग्ध चीज हो गई है। अपने बारे में बताना तो उससे भी अधिक संदिग्ध बात हो गई है। लोग समझते हैं कि अपने को बूस्ट किया जा रहा है, विज्ञापित किया जा रहा है। हालांकि आपको सुनकर थोड़ा सा अच्छा लगेगा शायद कि 3 सप्ताह पहले मेरे पास एक और मेल आया था जिसमें उस स्टूडेंट ने लिखा था कि उसे afeis.com के बारे में पिछले साल के टॉपर गौरव अग्रवाल से पता लगा। उन्होंने सजेस्ट किया था गौरव अग्रवाल ने कि आपको ये जरूर देखना चाहिए, जरूर सुनना चाहिए। उस समय मैं इस बात को टाल गया था, मैंने कहा कि ठीक है, चलिए एक बात है, जानकारी मिल गई। और अभी फिर से सिद्धार्थ ने, ब्रिजेश कुमार वर्मा ने सिद्धार्थ नगर से जो है उन्होंने ये बात लिखी, तो मुझे लगा मित्रों कि जब टॉपर और 23rd रैंकर और इस तरह के स्टूडेंट सजेस्ट कर रहे हैं तो मुझे अपने प्रिय श्रोताओं तक ये बात पहुंचानी चाहिए ताकि उनका थोड़ा सा जो भरोसा है वो इस ऑडियो पर थोड़ा ज्यादा हो सके। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपको बता चुका हूं कि जब हमारा भरोसा ज्यादा होता है तो हम उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने लायक भी बनते हैं। तो मैं आपको ब्रिजेश कुमार वर्मा का जो मेल है वो ज्यों का त्यों पढ़कर सुना रहा हूं। उन्हीं के शब्दों में है, सर जी नमस्कार, मैं इलाहाबाद में AIR रैंक 23rd अनिल धामेलिया से, जो गुजराती मीडियम से थे, इंटरव्यू हिंदी मीडियम से दिया है, से मिला। उन्होंने कुछ मैगजीन और AFEIS के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वे इसका यूज करते थे। सिटी सिद्धार्थ नगर। तो मित्रों, मैंने ये सूचना आप लोगों को दी है और ब्रजेश, तुम्हारी इस बात की मैं प्रशंसा करूंगा कि तुम गए और वो सक्सेस स्टूडेंट से सीधे सीधे मिले, तुमने उनसे बात की। डेफिनेटली हजारों बातें जो असर नहीं डालती हैं, एक सफल व्यक्ति एक बात बताता है वो असर डालती है, उसका प्रभाव पड़ता है। इसके लिए बहुत बहुत तुम्हारी प्रशंसा और इस बात के लिए बहुत बहुत आभार एकेडमी की तरफ से कि मिलने के बाद उन्होंने जो एकेडमी के बारे में कहा, AFEIS के बारे में कहा, उसके बारे में तुमने सूचित भी किया है ताकि दूसरे स्टूडेंट भी अगर चाहें तो इससे लाभ उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। मित्रों, अब मैं आता हूं अपने मोटिवेशन वाले सेक्शन में। दोस्तों, आज मैं जो हमारे कलाम साहब हैं उनके व्यक्तित्व को आपके सिविल सर्विस से जोड़कर थोड़े से अलग तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करूंगा। कल हम लोगों ने उन पर विस्तार से बातें की हैं, उन्हें हम लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है आप सबकी तरफ से भी, और आज मेरे पास काफी मेल आ रहे हैं जिसमें उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। उन सबके नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं जिन्होंने मेल लिखे हैं, लेकिन उनकी इस भावना का मैं सम्मान करता हूं कि वो इस तरह से उनसे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, हम आज कलाम साहब के व्यक्तित्व के उस हिस्से की बात करते हैं जो सिविल सर्विस के इंटरव्यू में आपके लिए मददगार हो सकता है, और खासकर इसकी शुरुआत हम इसको समझने से करेंगे कि सच में वो पर्सनालिटी होती क्या है, वो व्यक्तित्व होता क्या है। दोस्तों, आप जानते हैं कि कलाम साहब भारत के राष्ट्रपति थे, महान वैज्ञानिक थे, सब कुछ थे। इससे पहले भी बहुत से राष्ट्रपति हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे। इससे पहले के सभी जितने भी राष्ट्रपति हुए सबके व्यक्तित्व के अपने अपने हिस्से थे, अपने अपने ढंग थे, अपने अपने रंग थे, अपनी अपनी विशेषताएं थी। ये होता है, ये हर व्यक्ति के साथ होता है। लेकिन आप देखिए कि कलाम साहब की अगर मैं सबसे बड़ी विशेषता आपसे पूछूं, सबसे बड़ी क्या चीज थी जिसकी वजह से आज पूरा हिंदुस्तान कलाम साहब के निधन पर आंसू बहा रहा है, मायूस है? मुझे सच पूछे तो इस समय वो एक शेर की दो लाइनें याद आ रही हैं, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए जब उन्होंने अंतिम सांसें ली थी तो किसी शायर ने कहा था, बड़ी खूबसूरत दो पंक्ति है दोस्तों, और वो पंक्ति है कि बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। कलाम साहब के साथ भी यही हुआ, IIM शिलांग के स्टूडेंट बड़े गौर से उन्हें सुन रहे थे कि सो गए दास्तां कहते कहते, मतलब हर व्यक्ति उनसे जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। तो क्या इसलिए महसूस कर रहा है क्योंकि वो राष्ट्रपति थे? सोच के देखिए, आप अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाइए कि क्या इसलिए आज पूरा देश गमगीन सा है क्योंकि वो महान वैज्ञानिक थे? और अगर थे, बिल्कुल ये तो थे ही, और भी इससे पहले बहुत से राष्ट्रपति हुए हैं, आप लोगों के शायद स्मरण में ऊंची बातें नहीं होंगी, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इन कलाम साहब के निधन पर थोड़ी सी बात ही बिल्कुल अलग है। बहुत से वैज्ञानिक भी हैं, बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध वैज्ञानिक हमारे देश में हुए हैं, उनका भी निधन हुआ है, नो डाउट उनका भी जो निधन है वो अपूर्णीय क्षति की तरह होता है, देश को गमगीन कर जाता है, लेकिन क्या हर व्यक्ति इस तरीके से उनसे जुड़ा हुआ महसूस करता है? क्योंकि वैज्ञानिक तो एक बड़ा एकेडमिक किस्म की पर्सनालिटी होती है, वो अपने शोध में लगा हुआ है, लेकिन हर बच्चे से लेकर के बूढ़े तक उनसे जुड़ा हुआ क्यों महसूस कर रहा है? आखिर वो व्यक्तित्व की कौन सी बात थी जो इतनी गहराई से हर लोग हर व्यक्ति को छू रही है, जबकि वो उनसे मिला नहीं है, उनको देखा नहीं है, सिर्फ उनके बारे में या तो कहीं पढ़ लिया है, या उनके बारे में किसी से सुन लिया है, या टीवी पर उनको देख लिया है। अगर आपने उनको एक बार देखा भी है तो आपको लगता है कि ये कुछ अलग किस्म के व्यक्ति हैं, ये कुछ अलग ही हैं। तो वो अलग क्या है दोस्तों, आपको इसको समझना होगा, और यही सिविल सर्विस में आपको 275 में 220 नंबर दिला पाएगा। यही पहले जब इलाहाबाद में, अभी जो आईएएस में जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है, वहां इलाहाबाद की बात है या बीएचयू की बात है, वहां स्टूडेंट्स को बुलाया गया था, किसी स्टूडेंट ने मुझे उनके पॉइंट्स लिख करके भेजे थे कि उन्होंने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। उसमें उन्होंने एक पॉइंट बहुत अच्छा कहा था कि आप सबको अपने व्यक्तित्व की तैयारी आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन मुझे मालूम है कि आईएएस में बैठने वाले स्टूडेंट, ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, व्यक्तित्व की तैयारी की शुरुआत करते हैं जब मेंस का एग्जाम दे देते हैं, तो वो समझ ही नहीं पाते कि इनफैक्ट व्यक्तित्व क्या है। तो दोस्तों आप सोचिए कि कलाम साहब में ऐसा क्या है जो इतने गहरे रूप से छू रहा है। आप आफ्टर ऑल आपके अंदर वो क्या होनी चाहिए जो वहां बोर्ड के मेंबर को, जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, उनको गहरे रूप से छू करके और उनके कलम को मजबूर कर दे कि वो आपको 220 नंबर दें, जो अभी तक का अधिकतम स्कोर रहा इस साल का, मैं इसलिए 220 नंबर की बात कर रहा हूं। दोस्तों एक शब्द आपको मिलेगा जो मैं अपनी बात कह रख रहा हूं, जो मेरी अपनी तरफ से एनालिसिस है, वो है उनकी सरलता, उनकी सहजता। उनको एहसास ही नहीं है कि मैं राष्ट्रपति हूं। सच पूछे तो दोस्तों मैंने जिनके साथ 10 साल काम किया, शंकर दयाल शर्मा जी के साथ, उनके साथ भी लगभग यही बात थी। उनको लगता ही नहीं था कि मैं कुछ हूं, यहां तक कि उनकी जो पत्नी है उनको भी नहीं लगता था, उनकी पत्नी को भी, कि मैं राष्ट्रपति की पत्नी हूं या फर्स्ट लेडी ऑफ द कंट्री हूं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री हूं। इतने बड़े देश के 125 करोड़ की आबादी वाले देश की मैं प्रथम महिला हूं, या वो महसूस करते हो कि मैं प्रथम नागरिक हूं, प्रथम व्यक्ति हूं, बिल्कुल नहीं लगता था। दोस्तों ये सरलता कहां से आती है, ये सहजता कहां से आती है, कहां से इसका जन्म होता है, उसका स्रोत क्या है? क्या आप सरलता और सहजता ओढ़ सकते हैं? ओढ़ के देखिए, कभी करके देख लीजिए, तुरंत पकड़ में आ जाएंगे, यार ये तो बन रहा है, ये दिखा रहा है, इसीलिए यही तो हम कहते हैं। तो ये सरलता सहजता याद रखिए, ये व्यक्तित्व का बहुत अंदर व्यक्तित्व के बहुत अंदरूनी तह में मौजूद रहती है, जो आसानी से पकड़ में नहीं आती। दोस्तों ये केवल तभी आ सकती है जब आप अपने आप को ईगोलेस कर दें। अहम, घमंड, यूनिकनेस, इन सोच से जब आप अपने आप को मुक्त करेंगे तभी आप ईगोलेस हो सकते हैं। और जिस दिन आप ईगोलेस हो जाएंगे, आपकी भाषा बदल जाएगी, आपका चेहरा बदल जाएगा, आपके मस्तिष्क की क्षमता बदल जाएगी, आपके व्यक्तित्व का प्रभाव बदल जाएगा, सच पूछे तो जिंदगी का पूरा स्वरूप बदल जाएगा, जिंदगी की पूरी गुणवत्ता बदल जाएगी। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं, आज मैंने अखबार में पढ़ा है, कलाम साहब से ही जुड़ी हुई घटना है मित्रों। और वो घटना यह है कि अमन जैन हैं जो उनके सूट सिला करते थे, राष्ट्रपति जी अपना सूट कलाम साहब उन्हीं के यहां से सिलवाया करते थे, उन्होंने अपना संस्मरण दिया है। तो होता यह था कि राष्ट्रपति भवन में जाते थे, उनके सूट का नाप लेते थे, पहले तो कलाम साहब खुद उनकी दुकान पर जाकर के अपने सूट का नाप देते थे, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद फिर वो आप उस एरिया में नहीं जा सकते, सिक्योरिटी का रीजन होता है, मुझे मालूम है, जाने ही नहीं दिया जा सकता और जाने देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देश इतना बड़ा जोखिम मोल नहीं ले सकता, तो वो खुद आते थे। तो उन्होंने बताया कि एक बार जब वो गए नाप लेने के लिए, तो उस समय वो किसी सेंट्रल मिनिस्टर से, बहुत सीनियर सेंट्रल मिनिस्टर के साथ बात कर रहे थे, तो उन्होंने अमन जैन का परिचय मालूम है किस रूप में दिया, उन्होंने ये कहा कि दिस इज द मैन हु क्लॉथ्ड मी, कि ये वो व्यक्ति है जो मुझे कपड़े पहनाते हैं, ये नहीं कहा कि ये टेलर है या मेरे कपड़े सिलते हैं, ये वो व्यक्ति हैं जो मुझे कपड़े पहनाते हैं। क्या गरिमा प्रदान कर दी उस पद को, उस काम को। तो ये शब्द who clothed me निकला कहां से? क्या आप बना के बोल सकते हैं? कितनों के साथ बनाकर बोलेंगे? कितनों के साथ आप सतर्कता के साथ व्यवहार करेंगे? जो सतर्कता के साथ व्यवहार किया जाता है ना, वो नॉर्मल व्यवहार नहीं होता, वो नेचुरल नहीं होता। आप सिविल सर्वेंट बनेंगे, ब्यूरोक्रेट्स होंगे, आपको बहुत लोगों से सतर्कता के साथ व्यवहार करना पड़ेगा, खासकर जब आपके सीनियर्स होंगे, उनके साथ सतर्कता के साथ हमको व्यवहार करना पड़ता है। लेकिन ये सतर्कता के साथ व्यवहार का जो सबसे बड़ा संकट होता है वो ये है कि ये हमारे व्यक्तित्व में धीरे धीरे इस तरह से रच बस जाता है कि मुश्किल तब होती जब हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी इसी तरह से व्यवहार करने लगते हैं। कहलाते तो हम सिविल सर्वेंट हैं, और जब सिविल सर्वेंट बन जाते हैं तो दूसरों को अपना सर्वेंट समझने लगते हैं। लगता है हम तो मास्टर हैं, हम तो दुनिया में, हम तो हिंदुस्तान के बेस्ट लोगों में से निकले हैं और हमारा सिलेक्शन हुआ है, हम तो मास्टर हैं, सब हमारे सर्वेंट हैं। सारी चीजें उलट जाती हैं। और यहां एक राष्ट्रपति है जो देश का पहला नागरिक है, जितने भी सिविल सर्वेंट है सब उनके अंडर में है। इसलिए आपको जब अपॉइंटमेंट लेटर भी मिलेगा दोस्तों, तो आप देखेंगे उसकी पहली लाइन होगी द प्रेसिडेंट इज प्लीज टू अपॉइंट। आप प्रेसिडेंट के नाम पर, प्रेसिडेंट के बिहाफ पर काम कर रहे हैं, जिसके सारे इतने आईएएस आईपीएस और सारे के सारा ब्यूरोक्रेटिक तंत्र जिसके नाम पर काम कर रहा है, उसको इस बात का एहसास ही नहीं है कि मैं क्या हूं, वो सही मायने में सर्वेंट बना हुआ है। दोस्तों बहुत बड़ा ये अंतर संघर्ष है, और मैं चाहूंगा कि मेरे ऑडियो के जो प्रिय श्रोता हैं, अभी से आप लोग अभी कम उम्र में हैं, अभी आप लोग कोई 18-20 साल के हैं, 22 साल के, 24 साल के, 25 साल के हैं, इसी रेंज में ज्यादातर स्टूडेंट है। अभी है दोस्तों वो राइट टाइम जब आप अपने व्यक्तित्व को इस तरीके से रूप दे सकें, उसे प्रभावशाली बना सकें। और दोस्तों आपको देना चाहिए, आप कुछ समय के बाद बनने के बाद इस ऑडियो गाइडेंस को भूल जाएंगे, मुझे भूल जाएंगे, भूल ही जाना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि अगर आपने अपने व्यक्तित्व को बदल लिया तो आप भूल कर भी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि फिर भूलने जैसी कोई चीज रही नहीं जाती। फिर तो ये ऑडियो गाइडेंस या मैं या इस तरह की जो भी बातें आपको आपके माता पिता बताते हैं, आपके टीचर्स बताते हैं, वो सब आपके अंदर बस जाएंगे, रच बस जाएंगे, फिर भूलने का सवाल ही नहीं होता। ये सारी चीजें आपके नेचर में आ जाएंगी। और दोस्तों जब नेचर में आपकी चीजें आ जाएंगी तो इसको हमारे जो बोर्ड के मेंबर हैं वो समझते हैं कि ये व्यक्ति सच में कितना नेचुरल है, कितना भोला भाला है, कितना ऑनेस्ट है, कितना सीधा साधा है, और सही मायने में सर्वेंट बनने लायक है। फिर आपको नंबर कैसे नहीं मिलेंगे? दोस्तों जो इंटरव्यू बोर्ड है वो आपके नॉलेज का परीक्षण नहीं लेता, याद रखिए, वो आपके व्यक्तित्व के गहरे उतरना चाहता है, उतरता ही है। प्रश्न उत्तर तो उस गहरे उतरने तक की एक डोर है, एक रस्सी है, जैसे कोई कुएं में उतर रहा हो तो कुएं में उतरने वाले को कुछ सहारा तो चाहिए, रस्सी पकड़ के ही कुएं के अंदर उतरेगा ना, छलांग तो नहीं लगा देगा, तो रस्सी को पकड़ करके वो आपके अंदर उतरने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रश्न तो उत्तर, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, ये सिर्फ डोर है, ये मोटा सा पगहा है जिसके जिसको पकड़कर वो आपके अंदर ताक झांक करते हैं कि वो आपको जान सके और फिर समाज का दायित्व तो आपको सौंप सके। मित्रों मुझे कलाम साहब सच पूछिए तो उसी तरह के एक बहुत ही भोले भाले सच्चे ईगोलेस इंसान दिखाई देते हैं। तो मित्रों आज मैंने थोड़े से अलग तरीके से उनके व्यक्तित्व को लेकर के बात की है, क्योंकि दोस्तों हम आज से 100 साल पहले के व्यक्तित्व के बारे में बात कर सकते हैं, 50 साल पहले के व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं, उनके व्यक्तित्व के बहुत से खूबसूरत हिस्से इतिहास में दर्ज हैं, किताबों में लिखे हुए हैं। लेकिन कलाम साहब तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके सामने जीवित थे, जो आपके सामने चल रहे थे, फिर रहे थे, आपने देखा है उन्हें, तो उन पर तो सबसे ज्यादा विश्वास आप कर ही सकते हैं। भले ही पहले की बातों पर आप उतना यकीन न करें अगर आपका लॉजिकल माइंड बहुत प्रबल है तो, लेकिन यहां तो एक ऐसा व्यक्ति जो आपके सामने चल फिर रहा था और परसों रात में उसने हमेशा हमेशा के लिए हम सबसे विदा ले ली। एक बार फिर से दोस्तों मैं आप सबकी तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। फ्रेंड्स अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेज पर जो एआईआर न्यूज का चरण है, और एआईआर न्यूज में भी आपने देखा कि उसका सबसे बड़ा हिस्सा कलाम साहब कि जो अंतिम संस्कार की जो तैयारियां चल रही हैं, जो होना है, जो श्रद्धांजलियां दी जा रही हैं, उन्हीं के बारे में थी। उन्हें रामेश्वरम भेजा गया है, तमिलनाडु के जिस गांव में वो उन्होंने जन्म लिया था वहीं उनका अंतिम संस्कार होगा। आपने ये भी न्यूज में सुना कि तमिलनाडु की सरकार ने जहां अंतिम संस्कार होने जा रहा है उसने छुट्टी की घोषणा नहीं की है, क्योंकि कलाम साहब का ये कहना था कि नहीं, मैं मेरा जिस दिन निधन होगा उस दिन छुट्टी की घोषणा न की जाए, बल्कि एक दिन अधिक काम किया जाए, ये कर्मयोगी होता है। देख लीजिए, आप अप्रोच आपको बिल्कुल अलग तरीके से दिखाई देगी, जिंदगी के बारे में, चीजों के बारे में, देश के बारे में, समाज के बारे में। और इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि उन्होंने अपना पूरा जीवन ही समाज को समर्पित कर दिया था। और 84 साल की उम्र में भी जो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे, उनके आपने वॉयस सुनी है न्यूज में कि किस तरह से 6:30-6:30 बजे से उनका दिन शुरू हो जाता था और रात के 2 बजे 12-1-2 बजे तक उनकी गतिविधियां लगातार चलती रहती थी। 100-100 मेल आते थे, वो उनको पढ़ते थे और लगातार काम में जुटे रहते थे। दोस्तों, एक विशेषता मैं यहां और ऐड करना चाहूंगा कि वो वीणा के बड़े शौकीन थे। डेली रात में वो वीणा बजा करके ही सोते थे। शायद ये बातें बहुत कम लोगों को शायद मालूम हो, वीणा बजाते थे। और वीणा बहुत ही कठिन वाद्य है, वीणा को बजाना सबसे कठिन वाद्यों में से एक माना जाता है। आइंस्टीन वायलिन के बहुत जबरदस्त शौकीन थे, वायलिन बजाना और नौकायान बहुत ज्यादा ये काम करते थे। तो दोस्तों, होता है व्यक्ति अपने अपनी रुचि के अनुसार अपनी चीजें चुन लेते हैं। और दोस्तों, इस न्यूज के चर्चा के ही दौरान मैं एक बात आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि कुछ लेख आप देखेंगे कि कलाम साहब पर आए हैं, आएंगे भी, तो खासकर कलाम साहब का जो देश के भविष्य के बारे में जो नजरिया है, क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, उनके एथिकल वैल्यू क्या थे, उनके मोरल वैल्यू क्या थे, वो किस तरह के वैल्यू एक पर्सन से, एज सिविल सर्वेंट से एक्सपेक्ट करते थे। जब भी आपको कुछ ऐसी बातें पढ़ने को मिले तो प्लीज आप उन बातों को नोट कर लें, अलग से नोट कर लें, क्योंकि आपका जो जनरल स्टडीज का जो फोर्थ पेपर है, अगर आप उसमें कलाम साहब को कोट कर सकेंगे तो डेफिनेटली उस पेपर की वैल्यू बढ़ जाएगी। दोस्तों, यही होता है दूसरों से अलग अधिक नंबर पाने का एक तरीका। अदरवाइज तो फिर किताब की पढ़ी हुई बात तो हर कोई कहते ही है। तो इस बात पर आप विशेष ध्यान रखिएगा। और खासकर दैनिक जागरण का एक लेख है, राष्ट्रवाद, कलाम साहब के नजरिए में, दृष्टि में राष्ट्रवाद क्या था, वो आज नॉलेज सेंटर में आपको प्रोवाइड भी किया गया है। तो आप देखिए कि वो किस तरह से नेशनलिज्म को डिफाइन करते थे, उनके लिए नेशनलिज्म इनफैक्ट क्या था। तो वहां से आपको बहुत से मोरल वैल्यूज और एथिकल वैल्यूज आपको मिल जाएंगे। और दो चार भी आप इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, दैट्स ऑल। आपको ढेर सारे पूरी की पूरी लिस्ट दो चार पेज के बनाने की जरूरत नहीं है। आप 5 भी पॉइंट नोट कर लेंगे तो आपका जो फोर्थ पेपर में इस्तेमाल करने के लिए आपको ढेर सारी अच्छी सामग्री मिल जाएगी। दोस्तों, एक न्यूज थी कच्चा तेल के रेट के ऊपर। आप देख रहे हैं कि कच्चे तेल का रेट फिर से गिरना शुरू हुआ है। और आपको ध्यान होगा कि जब ईरान का परमाणु समझौता हुआ था यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स प्लस पश्चिमी जर्मनी के देशों के साथ में, तब से ये बात होने लगी थी। क्योंकि अब पहले तो ईरान अपने इच्छानुसार कच्चे तेल का प्रोडक्शन नहीं कर सकता था, लेकिन समझौता होने के बाद अब वो कर सकता है। तो उसने बटने चुड़ैल की, जब तेल का प्रोडक्शन वो बढ़ाएगा तो सप्लाई ज्यादा होगी तेल की मार्केट में, तो कच्चे तेल के दाम गिरने फिर से शुरू हो गए हैं। आपको मालूम है कि दो रीजन सबसे बड़ा है। एक तो ये है कि अमेरिका में जो तेल मिला है, खदान तेल की काफी खोज हुई है तो उससे सप्लाई बढ़ी है, और ईरान ने भी सप्लाई बढ़ा दी है तो तेल के मूल्य की गिरने शुरू हुए हैं। और आप सब जो इतने समय से ऑडियो गाइडेंस सुन रहे हैं या नहीं भी सुन रहे हैं, तो जो तैयारी वैसे भी तैयारी कर रहे हैं, उनको मालूम है कि कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर कीमत गिरती है तो भारत पर उसका बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। क्योंकि हमारी जो विदेशी मुद्रा है उसका सबसे बड़ा हिस्सा हम कच्चे तेल के आयात करने में खर्च करते हैं, तो ये हमारे लिए एक फेवरेबल सिचुएशन है। एक खबर जो छोटी सी थी दोस्तों, एक केवल ध्यान दिलाने के लिए मैं आपको ये खबर बता रहा हूं। ध्यान दिलाने के लिए इसलिए कि आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप न्यूज को सतर्कता के साथ सुने। जब भी न्यूज को सुने, सतर्कता के साथ सुने, और उसमें फिर जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसे एक बार सुनने के बाद दोहरा लें, अपने दिमाग में दोहरा लें। जरूरी नहीं कि आप उसे नोट करें, सारी चीजें याद रखिए कि नोट करने की नहीं होती हैं। अगर आप सारी चीजें नोट करने लगेंगे तो फिर आपने नोट किया या नहीं किया वो सारी चीजें बराबर हो जाएंगी। सारी चीजें नोट नहीं करनी, केवल जो इंपॉर्टेंट चीजें होती वो नोट करनी होती है। अदरवाइज आप जब केवल सुनते रहिए, आप देखेंगे कि जब आप एग्जाम में आंसर लिखेंगे तो वो चीजें खुद दिमाग में आपके उस समय आ जाएंगी, अगर आपने सतर्कता के साथ सुना है तो। उसी में आपने देखा कि जो सेबी है, जो खासकर जो हमारा शेयर मार्केट है उसका नियामक प्राधिकरण है, जो उसने सहारा म्यूचुअल फंड पर रोक लगा दी है, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। ये एक अच्छा कदम है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से, स्पेशली 2-3 सालों से, तो बहुत से ऐसे म्यूचुअल फंड्स के नाम हम देख रहे हैं, उनके जो हेड्स हैं, मालिक हैं, डायरेक्टर्स हैं, जेलों में बंद हैं, जिन्होंने फ्रॉड किया है। लोगों से पैसे ले लिए हैं लेकिन अब वो लोगों के पैसे नहीं लौटा रहे हैं। तो इस तरीके से अब ये अधिकार सेबी को दे दिए गए हैं और सेबी जब इस तरह के कठिन कदम उठाएगा तो निश्चित रूप से इस तरह के जो फ्रॉड होते हैं उस पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोक जरूर लगेगी। तो फ्रेंड्स, न्यूज के बारे में या यार न्यूज के बारे में बस इतना ही। अब मैं न्यूज पेपर पर आता हूं। फ्रेंड्स, आज आपको काफी आर्टिकल्स प्रोवाइड किए गए हैं। एक दो आर्टिकल्स की मैं आपको विशेष रूप से चर्चा करूंगा, खासकर आतंक जो खास गुरदासपुर में अभी जो घटना घटी है उसको लेकर के कुछ आर्टिकल्स आने ही थे और मैंने उसमें से सेलेक्ट करके आपको आप लोगों को दो आर्टिकल विशेष रूप से प्रोवाइड किए हैं। एक तो दैनिक जागरण का आर्टिकल है जो विवेक कार्जुन जी ने लिखा है, वो अच्छा लिखते हैं, और दूसरा टाइम्स ऑफ इंडिया का है, इसे आप देख लेंगे, आपको थोड़ा सा पता लगेगा कि किस तरह से चीजें शिफ्ट होती हैं, किस तरह से उनका रूप बदलता है, केवल एक जानकारी देने के लिए, उसमें याद करने जैसी कोई बड़ी बात नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के आर्टिकल्स में है नॉलेज सेंटर में दोस्तों, उसमें मैं नाम लेना चाहूंगा, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक एडिटोरियल कमेंट है आउटसोर्सिंग हेल्थ के ऊपर। देखिए, बहुत छोटा सा है, आप इसको ध्यान से पढ़िए और एक मॉडल के तौर पर पढ़िए। एक छोटा सा कमेंट है, एडिटोरियल कमेंट है। हुआ यह कि राजस्थान सरकार ने अभी अपने यहां हेल्थ की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए जो भी है लगभग 100 सेंटर्स जो गांव में हैं उनको आउटसोर्स करने का फैसला लिया है। आउटसोर्स करने का मतलब है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसको हम पीपीपी मॉडल कहते हैं, और पीपीपी मॉडल के बारे में आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसमें सरकार भी भाग लेती है और प्राइवेट व्यक्ति भी भाग लेता है और दोनों एक समझौता करके फिर उस काम को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे देश की ज्यादातर सड़कें अब पीपीपी मॉडल पर ही बन रही हैं, हालांकि उसमें अब ढेर सारे संकट भी पैदा हो गए हैं। इसके बारे में हम लोग बाद में कभी बात करेंगे, और जो फर्स्ट बैच सेकेंड बैच के स्टूडेंट हैं उनको मालूम है कि इस पर उनको मैंने एक्सक्लूसिवली एक स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भी प्रोवाइड किया था। अब उसको हेल्थ के सेक्टर पर ला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हेल्थ के सेक्टर पर राजस्थान पहली बार ही लेकर के आई है, बल्कि इससे पहले कर्नाटक में हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है, और वहां सिस्टम ठीक तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात यह इसलिए है कि जो हेल्थ की स्थिति है भारत में वो बहुत खराब है। अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को देखें तो भारत की रैंकिंग 112वीं है, मतलब हम बांग्लादेश और श्रीलंका से भी इंडेक्स हेल्थ इंडेक्स के मामले में पुअर हैं। और ये सब आप देखेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया में दिया हुआ है। मैं इसलिए आपको टाइम्स ऑफ इंडिया की उस छोटे से पीस को इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि उसमें कैसे छोटी सी चीज में कितनी सारी बातें शामिल कर ली गई हैं, और यही कमाल आपको 200 शब्दों में करना है। इसके बाद उसमें दिया हुआ है कि राजस्थान सरकार ये स्टेप उठाने जा रही है, ऐसा वो क्यों कर रही है। उसमें क्लियरली उन्होंने बताया है कि कैसे रूरल एरियाज में जो डॉक्टर्स हैं उसमें कितने परसेंट की कमी है, जो नर्सेज हैं लगभग 26-27% डॉक्टर्स की कमी है, फिर लगभग 50% नर्सेज की कमी है। तो ये सारी चीजें नहीं हो पा रही हैं और हेल्थ की स्थिति खराब होती जा रही है, और राजस्थान का जो हेल्थ इंडेक्स हमारे नेशनल से भी नीचे है। अब ये किया जा रहा है, तो अब इसकी कैसे पूर्ति की जाए, तो पूर्ति करने के लिए सरकार उसको आउटसोर्स कर रही है, प्राइवेट वालों को ऑर्गेनाइज बुला रही है, इनवाइट कर रही है कि ठीक है आइए, हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, यानी कि बिल्डिंग्स वगैरह दे देंगे, हम आपको मेडिसिन देंगे, हम आपको इक्विपमेंट्स देंगे, जिन भी मशीनरी की जरूरत होगी आप सर्विसेज प्रोवाइड कीजिए, मतलब डॉक्टर नर्सेज जो होंगे वो प्रोवाइड कीजिए और उस सेंटर को रन कीजिए, उसके बदले में फिर जो भी उनके चार्जेस होंगे या तो गवर्नमेंट देगी या पेशेंट कुछ देंगे या दोनों मिलकर के देंगे, अब देखते हैं उसका फार्मूला क्या बनकर आता है। तो इससे निश्चित रूप से इसको इस डिसीजन को टाइम्स ऑफ इंडिया ने वेलकम किया है कि इससे हेल्थ सेक्टर सुधर सकेगी, क्योंकि सरकार वास्तव में नहीं कर पा रही है, क्योंकि दोस्तों मेडिकल की पढ़ाई इतनी महंगी होती जा रही है कि सच पूछे तो डॉक्टर बनने के बाद कोई गांव में जाना ही नहीं चाहता। और आज की समस्या नहीं है, मुझे तो 1970 के आसपास जब मैं गांव में था हमारे यहां अस्पताल था लेकिन डॉक्टर कभी नहीं रहे, एक कंपाउंडर थे जो उस अस्पताल को चलाते थे और हम सब उन्हीं को डॉक्टर साहब कहते थे, पूरा गांव उन्हीं को डॉक्टर साहब कहता था। तो ये शुरू से समस्या रही है कि पढ़े लिखे जो डॉक्टर बन जाते हैं वो गांव में नहीं जाना चाहते, क्योंकि एक तो उनको गांव में उस तरह की फैसिलिटी नहीं मिलती, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए सुविधाएं नहीं होती हैं, फैमिली के लिए नहीं होती, और सच पूछे तो गांव में आप बीमारी भी क्या, बुखार और सिंपल तरीके से देखते हैं, इक्विपमेंट भी नहीं होता, तो उनको यह भी लगता है कि उनका सारा पढ़ा लिखा भी सब बेकार जा रहा है। तो ये संकट भारत में है। इसको लेकर के फिर दो क्वेश्चन उठाए गए हैं, लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, राजस्थान सरकार ने जो स्टेप उठाया उसका लोग विरोध भी कर रहे हैं। विरोध के दो पॉइंट उन्होंने दिए हैं, पहला तो ये कि कह रहे कि सरकार अपने हेल्थ की रिस्पांसिबिलिटी से अलग होना चाह रही है, जबकि सच ये नहीं है। अब सारे के सारे डिटेल्स आएंगे तो पता लगेगा। दूसरा उन्होंने ये उठाया कि इसकी वजह से जो प्राइवेट वाले लोग हैं वो अपना पेशेंट का शोषण करना शुरू कर देंगे। ये उन्होंने दो अपने पॉइंट रेज किए, ठीक है, उनके लेवल पर दोनों पॉइंट्स वैलिड हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास पूरा का पूरा फॉर्मेट नहीं है कि किस तरह से ये सिस्टम रन करेगा, इसीलिए इस पर कुछ भी टिप्पणी करना अभी जल्दबाजी होगी। जब वो चीजें भी आएंगी तब फिर हम इसके सही तरीके से एनालिसिस कर सकेंगे। लेकिन इन टोटल अब जिस तरह की सोसाइटी डेवलप हो रही है, जिस तरह का हमारा इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप हो रहा है, सरकार का जो स्वरूप बन रहा है, उसमें दोस्तों सही पूछिए तो अब जो युग आ रहा है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ही युग आ रहा है। उस हिसाब से इसको हम वेलकम कर सकते हैं, और अगर वहां सफल होता है तो बाद में जो हमारे नॉर्दर्न स्टेट है और वेस्टर्न स्टेट है जहां दूसरे राज्यों में भी बहुत खराब स्थिति है, वो इसको फॉलो कर सकते हैं। तो मित्रों ये बहुत इंपॉर्टेंट था सिविल सर्विस के क्वेश्चंस की दृष्टि से भी, और किस अच्छे तरीके से टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको प्रेजेंट किया है इस दृष्टि से भी, तो आप लोग इसे जरूर देख लेंगे। और दूसरे आर्टिकल हैं दोस्तों, आप देख लेंगे सारे के सारे, उसमें डले हुए पुलिस सुधार के ऊपर है, राज्यों में मानवाधिकारों के ऊपर है, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर है, और इसी तरह से आवास समस्या पर है। ये सारे के सारे आर्टिकल्स इस तरीके हैं, जो इस तरीके के हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स पर हैं जो आपकी जानकारी में होने ही चाहिए। दोस्तों अब मैं आता हूं लास्ट स्टेज पर, जो ईमेल का चरण है। सबसे पहले मैं नचिकेता का मोबाइल नंबर देना चाहूंगा। नचिकेता के नाम को आप जानते हैं, जो गया में AFEIS क्लब का काम कर रहे हैं और बड़ी खूबसूरती से कर रहे हैं। जो सूचना मुझे वो दे रहे हैं उसके अनुसार कुछ लोगों ने उनका मोबाइल नंबर मांगा था कि वो उनसे देखना चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं, जो भी है। तो नचिकेता ने अपना मोबाइल नंबर दिया है, मैं उनका मोबाइल नंबर बोल रहा हूं, सुन लें, नोट कर लें, 9097157392। ये नचिकेता का मोबाइल नंबर है। थैंक यू नचिकेता मोबाइल नंबर देने के लिए। तो मित्रों अब मैं सभी अपने उन दोस्तों को जिन्होंने मेल लिखे हैं, चाहे मैं उनका नाम ले रहा हूं या नहीं ले रहा हूं, धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के मेल ही सही मायने में इस ऑडियो गाइडेंस का सही रूप में मार्गदर्शन कर रहे हैं। इनमें से कुछ दोस्तों के नाम हैं, अभिनव यादव बाराबंकी यूपी से, एसके सरकार उत्तराखंड से, रोशन कुमार, बीएस मीना जयपुर से, रंजीत कुमार, नीतीश कुमार बेगूसराय से, और अनुषा अग्रवाल नई दिल्ली से। तो मित्रों इसी के साथ ही मैं अब आज के अपने इस ऑडियो गाइडेंस को यहीं समाप्त करता हूं। कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।